Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार, शुभ संध्या. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, अगले 30 मिनट हम आपसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर बातचीत करेंगे. बातचीत करने के लिए और प्रमुख समाचारों की विवेचना करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. नमस्कार विशाल, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
Benchmark domestic indices decline, Sensex drops 1,000 points, Nifty settles below 23,900. Major Asian stock markets end mixed and global crude oil prices slip.
घरेलू शेयर बाजार में मंदी, सेंसेक्स 1,000 अंक फिसला, निफ्टी 23,900 के नीचे आया. अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिलाजुला रुझान और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decisions.
मार्केट मंत्र का सबसे अहम जो हमारा हिस्सा है वो है कि आज बाजार की हलचल कैसी रही. तो श्रोताओं, आइए जानें कि आज बाजार की हलचल कैसी रही. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 1% से अधिक गिरे, जिससे लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आई. सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़ककर 76,664 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 275 अंक फिसलकर 23,898 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई. इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों और अनिश्चितता के कारण बाजार की शुरुआत मंदड़ियों ने की. पूरे सत्र के दौरान सूचकांक घाटे में नजर आए और सभी क्षेत्रों में चौतरफा बिकवाली हुई. एआई से जुड़ी चिंताओं और कच्चे तेल के बढ़ते दाम के कारण दलाल स्ट्रीट को भी भारी झटका लगा.
The benchmark domestic equity indices declined over 1% today, extending the losing streak for the third straight session. The Sensex plunged 1,000 points or 1.3% to close at 76,664, while the Nifty shed 275 points or 1.14% to settle at 23,898. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 dropped almost 1%, while the small cap 100 dipped nearly 0.9%. Earlier, the markets opened on a tepid note, tracking weak global cues and lingering uncertainty. Indices remained under pressure throughout the session with the broad-based sell-offs across sectors. Fear surrounding artificial intelligence and elevated crude oil prices jittered the dalal street.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में इन्फोसिस 7% से अधिक, एचसीएल टेक लगभग 6% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 5% की गिरावट आई. वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम ट्रेंट 0.7% से अधिक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई में लगभग 0.4% की बढ़ोतरी हुई.
And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors registered downward move. Among the top losers, IT tanked 5.1%, focused IT lost over 4.6%, and healthcare as well, as telecommunications fell over 1.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,905 companies declined, 1,326 advanced, and 158 remained unchanged.
और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 94.25 रुपए के स्तर पर रहा। डॉलर सूचकांक, जो अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.66 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, हमने आज लगातार तीसरे सत्र में गिरावट देखी है बाजार में। कहीं ना कहीं जो अनिश्चितता है वो तीनों कारोबारी सत्रों पर हावी रही है, मगर आप आज की गिरावट को कैसे परिभाषित करते हैं?
देखिए प्राची, हर गिरावट का कोई कारण होता है, और क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 दिन से जो सेशंस है मार्केट के उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हाल फिलहाल में अगर पिछले कुछ हफ्तों की भी बात करें, केवल 3-4 दिन की बात नहीं है, तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे कि माना जा सकता है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट आ रही है, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो ईरान और अमेरिका के साथ जो इसराइल, यानी कि इन दो गुटों के बीच जो युद्ध जो चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें कोई ठोस सीज फायर का जो प्लान है वो सामने नहीं आ रहा है। हालांकि एक टेम्पररी सीज फायर जिसे कहा जाए वो जरूर है, लेकिन लगातार छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लगातार बयान आ रहे हैं, और सीज फायर की जो प्रोसेस है उसमें जो अगले राउंड की जो बातचीत होनी थी उसको लेकर भी कोई बहुत बेहतरीन नतीजे नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं खासतौर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के, वो कोई बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं है, और मार्केट सेंटिमेंट्स को बहुत नजर में रखता है, बहुत भाव देता है। और इसका सीधा असर, क्योंकि ये लड़ाई का सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस पर भी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि जहां से लगभग 20% पूरी दुनिया का जो एनर्जी सप्लाई है वो होती है, उस पर असर पड़ रहा है, तो उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी लगातार बढ़ी रही, हालांकि आज थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन अभी भी $104 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है जो प्राइस है वो, और उसे बड़ा कंफर्ट जोन में नहीं कहा जा सकता। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस महीने की शुरुआत में हमने देखा कि FIIs ने इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना जरूर शुरू किया, लेकिन पिछले लगभग 3-4 दिनों से लगातार FIIs का जो सेल ऑफ है वो चल रहा है, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हो चुकी है। तो यानी कि ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स जब एक साथ आते हैं, और खासतौर पर सेक्टोरल इंडाइसेस के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर हो, अगर उस पर नजर डाल के देखें तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो काफी वीक रही हैं, उनके जो
पूरे सप्ताह में ही जी बिल्कुल
एक तरीके से खराब प्रदर्शन रहा। तो ये सब चीजें एक साथ मिलकर बाजार को कोई एक पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दे पा रही है, और इस वजह से लगातार जिसे कहा जाए सेल ऑफ का दौर है वो जारी है, और मैं मानता हूं कि वही सबसे बड़ा कारण है। उम्मीद है कि अब जब नया हफ्ता शुरू होगा तो एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह होगी।
Right, Vishal, we have been talking all the while, especially in the past 2 months or so now, about the state of Hormuz, Iran, Lebanon, US and all. That's, of course, that's happening. And you mentioned about the energy prices and all the crude as well, of course. But what is more remarkable is the slide in the IT sector. We just heard that Meta has slashed 8,000 of jobs. That's almost 10% of the entire workforce. How do you see this happening and how is this going? What track is it actually taking?
See, as I was saying earlier, Nishit, that, you know, one is, of course, the weak earnings. Yeah. Now, every sector in almost every quarter has to face this challenge. If the earnings are not up to the mark or are not living up to the expectations, then of course, there will be an impact on that part. Second is not much of an elbow room there, because the geopolitical crisis seemingly is also having an impact on the IT sector, in the terms that if you remember earlier on, Iran had identified targets saying that these are legitimate targets for us, and most of them were big IT majors as well, data centers, big IT hubs as well, big companies. So that doesn't go well with the market. Those are not the sentiments on which the market would work. And you combine them with low earnings, rather weak earnings, and you combine them with sort of a delayed sentiment in discretionary funding or discretionary spending by these companies. That seemingly is putting a lot of pressure on the IT sector.
Vishal, even as I talk about the data centers and all, let's not forget, is it also an offshoot of the AI dampener which has been doing the rounds, you know, for quite some time now.
Well, when any new dawn starts to take shape, Nishit, yeah. So of course there are doubts and, you know, there are redoubts and there are criticisms and counter-criticisms. So this was bound to happen. Mm-hmm. The dampener for the AI sector, because of course there are challenges. This is a new technology, you know. Yeah, we are not able to make sense of the whole. We're just trying to keep pace with the changes which are happening every day. And that seemingly makes things difficult for the market also to understand, because for the market, clearly, you know, there needs to be a lot of clarity. You know, the investors won't put their money unless there is clarity. And of course, as far as AI sector is concerned, I believe it will take some more time before that, you know, real clarity happens.
विशाल, क्योंकि आपने एआई की बात की और आईटी सेक्टर की बात की, तो मैं बिल्कुल ये चीज देख पा रही हूँ कि हमारे जो श्रवणकर्ता हैं, जो श्रोता हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि विशाल जी हमें बताएंगे कि ऐसे कौन से चुनिंदा सेक्टर्स हैं, चुनिंदा क्षेत्र हैं, जहां पर आज की भी तारीख में, यानी कि इतनी अनिश्चितताओं के बीच भी हम
निवेश
The similar amount of investment. If anybody invests a single rupee, the value for them might be a million worth, right, equal to a million rupees. Now the important aspect is let's shift focus to the basics. What are the basics required? The basics are infrastructure sector, of course, the infra is, as far as within the country, the infrastructure is something which is happening at a rapid pace, and that will happen. Of course, there will be some dampeners, one or the other, but if you look at various other aspects, सीधे तौर पर अगर हम ये जानना चाहें कि भाई कहाँ इस वक्त निवेश करना चाहिए, तो अगर कहाँ निवेश करना है, तो उस सवाल का जवाब आपको सभी कंपनियां जिन पर आपकी नजर है उनका अच्छे से आकलन करके लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर सेक्टर के हिसाब से देखें, तो जैसा मैं कह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति जो है पूरे विश्व में बनी हुई है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जरूर उम्मीद की किरण है. स्पेस, जिसके ऊपर पहले से ही जो भारतीय बाजार है, भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी बुलिश रहे हैं शुरू से ही, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई अभी गिरावट आई है या आ सकती है. जहां तक एआई की बात है, इतनी जल्दी मुंह मोड़ लेना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एआई के अच्छे जो परिणाम है या अच्छे जो काम है वो कई सेक्टर्स में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो. हाँ, मॉडल को थोड़ा सा बदलना जरूर पड़ सकता है, मॉडल को थोड़ा सा एडेप्ट करना जरूर पड़ सकता है. तो निवेश करने से पहले एक बार जांचे परखें जरूर कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, क्या उसका केवल नाम ही बड़ा है या उसके काम भी थोड़े बहुत कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं.
True. We just discussed about the sectors that the investors should or listeners should invest in. But taking a word a bit further now, Vishal, besides the sectors, let's come to the capitalization thing now. Now, small cap, we know, it bleeds when it bleeds. Mid cap as well. So, your suggestion for our listeners, should they stick to the blue chips or the large caps for the moment?
As of now, I don't think there is any reason to, you know, take a snap call, because those who have been in the market for quite some time now would understand that, reversals like these or negative days like these, even the rally for a constant period of 3, 4, 5 days, mm-hmm. is nothing new in the market, you know. Mm-hmm. If you're confident about, the blue chips, if you're confident about your call which you have made in mm-hmm. terms of investments, I think it should not be a cause for bother. And of course, if you're an SIP investor, then you're in a win-win situation, because when the market goes down, your share goes up. It's a very interesting formula. Absolutely. And if any investor, any worthy investor, if they understand that formula, I believe most of them would want to make use of this opportunity to a great extent.
Right.
ऐसे समय पर जब इतनी अनिश्चितता है बाजार में, और आपने अभी बात भी की फंड्स की, बहुत सारे जो निवेशक है उनके मन में ये सवाल रहता है कि हम अभी अगर बाजार में पैसा लगाएं तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बाजार में एकदम अगर धराशायी हो रही है, तो कई बार आपकी जो भावनाएं हैं वो बड़ी आहत होती है कि हमने बाजार में पैसा लगाया. तो इस समय क्या रुख एक निवेशक को अपनाना चाहिए?
देखिए, बाजार में पैसा लगाने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन थोड़ा सा भावनाओं के साथ दिल के साथ साथ दिमाग लगाना भी जरूरी है और थोड़ा सा आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बाजार में गिरावट हो रही है। अगर हम पिछले 20-25-30 साल का इतिहास उठाकर देखें तो बाजार में जब भी गिरावट होती है तो उसकी रिकवरी भी लगभग उतनी ही तेज गति से होती है। हाल फिलहाल में अगर हम कोरोना काल को देखें तो उस समय भी बाजार बहुत जबरदस्त धड़ाम से गिरे थे
उस समय भी। Why just corona, Vishal? Let's go back to 2008 crisis.
2008 crisis.
Yes, yeah, let's go to the dot-com burst.
Yeah, that's
even earlier.
Yeah, right. That's the thing. If you look at the data in the last 20-30 years, you know, this gives us a clearer picture that markets will rebound. Now the question is, where are you invested? Now again, I'm saying the big question is not whether you're invested. The big question is, where are you invested? And that is a question which every investor will have to answer for himself and herself, because ultimately it is your hard-earned money. You will have to do the due diligence. You can't go by some speculations in the market. You can't go by the numbers which reflect on the screens in the past 48 hours or 72 hours. I don't think those are the real parameters on which an investment decision can be made. Let's look at the history of the company. Let's look at the financial structure of the company. Let's look at the book value of the company. Let's look at the order book of the company. It is going to take effort, but then it takes efforts to earn money everywhere. So why is anybody expecting that markets will be a little lesser?
Let's not forget, Vishal, it also depends on the gas that's left in your tank as well and the risk appetite that you carry with it.
Well, yes, that's right.
Yes.
बिल्कुल श्रोताओं, ये बड़ी ही मार्मिक चर्चा हुई और आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। जापान का निकेई लगभग 1% बढ़ा और हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक ने 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% से अधिक लुढ़का और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी स्थिर रहा। बात करें प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की तो यहां भी मिला जुला रुख देखने को मिला। लंदन का फुटसी लगभग 0.3% और फ्रांस का कैक 0.2% नीचे आया। वहीं जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% से ऊपर कारोबार करता नजर आया।
एंड मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द वॉल स्ट्रीट क्लोज्ड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी ओवर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द यूएस इरान वॉर डैम्पेड द मार्केट सेंटीमेंट। लॉसेस वर लार्जली ड्रिवन बाय डिक्लाइंस इन सॉफ्टवेयर स्टॉक्स एंड अ सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। Among the major indices, the Nasdaq Composite Index tumbled 0.9% and the S&P 500 lost 0.4% and the Dow Jones Industrial Average dropped nearly 0.4%. Vishal, we see the crude and the IT sector majorly as of now affecting the markets. But one thing we must also not forget is the noises that the US leadership makes all the while. Now on, now off, now on, now off. This has also got to do something with the markets, right?
Well, not something. I would say a lot of things, because ultimately the market sentiments are formed by the kind of atmosphere which is created, and in the given present a volatile geopolitical situation, these statements which come in from the head of states or the leaders who matter, specifically from both the warring sides, they do have an impact. Say for example, President Trump makes a statement regarding war, that would have an impact, because that would decide as to how investors would look at the immediate future prospects, specifically in the energy sector.
True.
Same goes for the Iranian side as well. If Iran decides not to come for the second round of talks and accuses US of not living up to the promises made, or bothering about what they've said, that of course also has a negative impact. That basically carries an underlying statement that there is no immediate end to this hostility which is seen, and that is the larger sentiment which gets carried to markets, not only Indian markets but markets across the globe, and that is where we see depending upon the time zone, the markets reacting accordingly.
It also looks like that all the warring factions or the sides of the nations, they have been kind of caught in a quagmire kind of a situation here, because initially what the sense makes with the major commentaries running around that this war was not meant to last this longer, probably it was a short burst of energy which probably both sides looked at, wherein it could have probably ended in a week or 2 weeks' time or something like that. But it has, since it has lingered so long now, that it has bound to get some amount of, rather a substantial amount of effect and on the markets as well. Moving on to the forex reserves now. India's foreign exchange reserves rose by $2.3 billion, reaching over $703 billion for the week ending April 17th. According to the Reserve Bank of India, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $1.48 billion to over $557 billion during the week. Gold reserves climbed by $790 million to over $122 billion. Special drawing rights rose by $78 million to $18.84 billion. Meanwhile, the central bank's position in the International Monetary Fund edged up by $14 million to $4.87 billion. Vishal, besides, of course, the surge in the forex reserves, another area of concern is the slide in the rupee. Now, how do you see the RBI kind of monitoring it or taking some steps?
Well, I think RBI is in a wait and watch mode right now because, the fall in the rupee is in the rupee is a bit constant now. It's happening gradually, and it might seem immediately as a bit of a cause of concern. But as far as RBI is concerned, given the kind of stance which it has taken in the past, two monetary policies as well, it looks like the central bank still believes that it will rebound. Things will turn around, given the fact that there might be some silver lining as far as the geopolitical situation is concerned. So I don't think there's going to be any immediate reaction right now. Maybe a wait and watch situation. This might sound a little bit flustering as of now, but not a major cause of concern.
And how,
this level, if it goes beyond and if it continues with this rate, then of course something will have to be done.
So now with the next MPC, how do you see the rates going? North or south or something like constant?
I believe if that's the trajectory where we stand, I believe it will still be constant.
All right.
आगे बढ़ते हैं. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इस महीने की 20 से 23 तारीख तक अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन का दौरा किया. वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि 7 फरवरी को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए तैयार किए गए संयुक्त ढांचे के आधार पर दोनों पक्षों ने इसके विवरणों को और बेहतर आकार देने तथा व्यापक वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की. मंत्रालय ने यह भी बताया कि चर्चा के प्रमुख मुद्दों में बाजार पहुंच, गैर टैरिफ, तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और डिजिटल व्यापार शामिल थे. विशाल, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से?
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब फरवरी में इस मसौदे पर चर्चा हुई थी और सहमति बनी थी, तो उसके बाद से लेके दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है
जी.
और इस बदले हुए वातावरण में, बदले हुए माहौल में हम कैसे मैन्यूवर करेंगे और किस तरह की और जो बदलाव हैं इस, या अगर बदलाव की जरूरत है इस मसौदे में, तो क्या वो लाए जा सकते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से उसको बहुत बेहतर तरीके से और किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि अगर इसको 100% इम्प्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जाए दोनों तरफ से तो वो संभव हो, क्योंकि अमेरिका एक लड़ाई लड़ रहा है और उसका सीधा असर उस लड़ाई का जो है भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जो जिस तरह का माहौल है. तो ये जरूरी होगा कि दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें गिव एंड टेक क्या है, नंबर एक, और नंबर दो, इम्प्लीमेंटेशन की जो टाइमलाइन है और उसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है उसकी असेसमेंट क्या है.
जी, आगे बढ़ते हैं.
एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस Pema Sani Chandrasekhar today said that India's telecom sector has witnessed transformative growth over the past decade, driven by strong government-industry synergy. Addressing the COAI Digicom Summit 2026 in New Delhi, Dr. Pema Sani said technologies like 6G, artificial intelligence and quantum will shape the next phase of digital transformation, and emphasized the need for close collaboration between government and the industry. The minister highlighted that the sector's gross revenue rose to 3.72 lakh crore rupees in financial year 25, supported by strong reforms and rising foreign investment.
खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन शामिल किया है। खान मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य खदानों के संचालन को सुगम बनाना, उसमें तेजी लाना, खनिज उत्पादन बढ़ाना, खनन क्षेत्र से राज्यों को राजस्व संग्रह में वृद्धि करना और इस क्षेत्र के समग्र शासन में सुधार करना है।
Right. Looking back at these two stories, Vishal, the earlier one of the telecom, it is kind of course, it is witnessed transformative growth over the past decade. That's no denying that. And also with the kind of technology, you know, coming up, like the 6G artificial intelligence we talked about earlier in the program, quantum, how big they are going to get in the coming days for India, of course, you know, to become the developed country by 2047.
Well, quantum, of course, and 6G, both of them are the real future. When we, you know, if we remember correctly, Nishit, when we were living in, you know, 3G and 4G,
yeah,
we
even used to 2G.
Even 2G as yes. well. So we used to talk about 4G, 5G, and their impact as well, how it works, how it, you know, will transform. And we've seen it now in real life. It does bring transformative changes
true.
Because ultimately communication is the key, specifically in the sector of telecommunication. The more refined the technologies are, the more better the results will be. Same goes for 6G. And of course, quantum is a new, field altogether. Quantum is a new, sort of area altogether. It will impact things a lot. But I believe as far as quantum technologies are concerned, perhaps we would be looking at a much larger or much longer, time frame. But 6G, of course, that's not something which we should be able to wait for long. And the transformation from 5G to 6G will, of course, ease various processes, specifically in sectors like healthcare, sectors like education, and that is going to be really important because these are the two sectors where Indian governments one after the other have been focusing upon trying to improve the delivery mechanism, trying to improve the kind of money which is invested there, that the results are shown on the ground, and that largely happens only when the technology is working in tandem.
Absolutely.
विशाल, अभी हमने पढ़ा कि खान मंत्रालय ने राज्यों को एक विशेष सहायता दी है जो कि 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन है। आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, उस संकल्प को ये जो पोषण है, ये कितना पोषित करता है?
देखिए, जो राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर खनन ज्यादा होता है और जो रेवेन्यू है, क्योंकि देखिए खनन से रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, केवल ऐसा नहीं है कि खनिज और खनिज पदार्थ ही मिलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे रेवेन्यू भी मिलता है। और जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए खासतौर पर रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, अगर वो ठीक से मैनेज हो पाए और उनका एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हो फेडरल स्ट्रक्चर में, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हर राज्य के पास जो रेवेन्यू है वो अर्न करने के लिए कोई बहुत बड़े आयाम नहीं होते हैं। किसी के पास कोई पॉलिसी होगी, किसी के पास टूरिज्म होगा, तो किसी के पास मेडिकल टूरिज्म होगा, लेकिन यहां ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका असर सीधा राज्यों की जो माली हालत है उसको सुधारने पर रहेगी।
And the global crude oil prices reversed earlier gains and were trading in the negative zone. Brent crude was trading 0.4% down at $104.65 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading 1.2% down at $94.69 per barrel when reports last came in. And moving on to the bullion market, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.1% up at 1,52,680 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.6% higher at 2,44,920 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.3% se adhik badhkar 1,52,296 rupees prati 10 gram par tha, aur mai anubandh wali chandi 0.9% badhkar 2,43,656 rupees prati kilogram par thi. Vishal, karyakram mein aane aur tamam sawalon ke bahut hi vistrit jawab dene ke liye aapka बहुत-बहुत धन्यवाद
प्राची।
Thank you so very much, Vishal. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline. Sensex drops 1,000 points. Nifty settles below 23,900. Major Asian stock markets end mixed. And the global crude oil prices slip. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।